उठो जागो, तुम स्वार्थी हो, धार्मिक धार्मिक अपने को कहते हो पर पहचान नहीं पा रहे हो, चरित्र तुम्हारा गिरा हुआ है, उसे पुष्ट करो, अपने अध्यात्म को जो विरासत से तुम्हें मिला है पुष्ट करो, अपनी साधना के द्वारा, दुनिया आज चाहता है इस अध्यात्म को, दान करो और वहां से वह भौतिक पक्ष तुम स्वीकार करो, आगे बढ़ो। और मैं तो देख रहा हूं भारत माता पुनः अपने उस जाज्वल्यमान सिंहासन पर विराजमान है, आगे बढ़ रहे हैं भारत माता के कदम, अब भारत माता के बढ़ते कदमों को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। स्वामी जी ने इस प्रकार देखा था, इस प्रकार कहा था और उनकी इस अनुभूति पर हम कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना चाहते, हमें विश्वास है, पर यह विश्वास सही रूप धारण कब करेगा, जब हम में से प्रत्येक व्यक्ति उठेगा, अपने भीतर की कमियों को दूर करने की चेष्टा करेगा और देश को उठाने की चेष्टा करेगा। तो शिष्य ने सुना गुरु जी का उपदेश, गुरु जी ने कह दिया देख बेटा यह साधना की पद्धति है आत्मनो मोक्षार्थम जगत धिताचो, अब यह शिष्य चला गया साधना करने के लिए, उसी प्रकार कर्म किया, उसी प्रकार उसने विद्या की उपासना की, अविद्या और विद्या की उपासना कर रहा है, अब उसका मन अंतर्मुखीन हो रहा है। अंतर्मुखीन होकर के क्या कहता है, 15वें मंत्र में हम पढ़ते हैं हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन अपावृण्णु सत्य धर्माय दृष्टये, प्रार्थना करता है, क्या कहा, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखं, हे सत्य तुम सत्य कौन हो, मैं सत्य को पाना चाहता हूं, पर हे सत्य तुम्हारा जो मुखड़ा है वह हिरण्यमय पात्र के द्वारा ढका हुआ है, ढक्कन पड़ा हुआ है, हिरण्यमय पात्र माने सुनहला पात्र, मानो यह जो सोना है स्वर्ण है यह लोभ का ही प्रतीक है, लोभ के कारण सत्य का मुखड़ा ढक गया है, इस सत्य को मैं देखना चाहता हूं पर इस पर लोभ का आवरण पड़ा हुआ है, मानो वह प्रार्थना करता है। यहां पर कहा गया है टीकाकारों के द्वारा, मानो यह जो सूर्य है, सूर्य इसका प्रतीक है सत्य का, तो मानो वह सूर्य से, सूर्य के कई नाम पूषण, जहां पर आप देखेंगे सूर्य को कई नामों से पुकारा है, तो यहां पर तात्पर्य यह किया है ये सूर्य देवता, मानो यही सत्य जो जीवन देते हैं, चैतन्य देते हैं, प्राणवत्ता प्रदान करते हैं, तो वह प्रार्थना करता है, क्या कहता है, हिरण्यमय पात्र से सुनहले ढक्कन से तुम्हारा मुंह ढका हुआ है, हे सत्य मैं सत्य धर्मा हूं, मैं सत्य तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम कृपा करके अपने इस सुनहले आवरण को तो हटा दो, जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारे मुखड़े को देख नहीं सकूंगा, मैं सत्य के दर्शन करने में समर्थ नहीं हूंगा, मन व्याकुल होकर के प्रार्थना करता है। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे अरे भगवान को पाना है तो व्याकुलता चाहिए, व्याकुलता, जब भक्तों ने पूछा महाराज क्या हमें भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं, तो श्री राम कृष्ण क्या कहते हैं, क्या तुम भगवान के दर्शन करना चाहते हो, भगवान को चाहते हो, यह प्रश्न है। देखो रे लोग भगवान को नहीं चाहते, लोग भगवान से चाहते हैं, कैसी अद्भुत बात है, हम भगवान को नहीं चाहते, हम भगवान से चाहते हैं, भगवान से नाम यश चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, हम भगवान से सत्ता चाहते हैं, कौन चाहता है भगवान को, जो भगवान को चाहता है भगवान मिलते हैं। तो यहां पर मानो यही व्याकुलता प्रदर्शित की गई है, कहता है यह साधक मैं सत्य धर्मा हूं, मैं सत्य छोड़कर के और कुछ नहीं चाहता, पर हे सत्य तुम्हारा मुखड़ा इस सुनहले आवरण से ढक गया है, कृपा करो मैं तो उस आवरण को हटाने में समर्थ नहीं हूं, यह लोभ का पर्दा है, जिसको हटाने की प्रार्थना यह साधक कर रहा है। मैंने कहा था हर उपनिषद की अपनी एक विशिष्टता है, ईशावास्योपनिषद की विशिष्टता है लोभ को दूर करने का, यह विशिष्टता, लोभ बहुत बड़ा अंतराय, बहुत बड़ी बाधा, तो कहता है यह दूर करो दूर, और जब बहुत व्याकुल हो गया तो क्या कहता है, अगले मंत्र में पढ़ते हैं पूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्यो व्यूह रश्मि समूह तेजहा, क्या प्रार्थना करता है, कितने नाम यहां पर गिना दिए, पूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य, मानो पांच नाम वह लेता है, तो मानो वही सूर्य जो सत्य स्वरूप है उसी के भिन्न भिन्न पांच नाम। क्यों? जब मनुष्य विपत्ति में होता है, बहुत आकुल होकर के प्रार्थना करता है, तो भगवान का क्या एक ही नाम लेता है? कहता है दयामय, करुणा के सागर, दीन बंधो, कृपा करो महाराज, प्रभो। क्या हम कितनी बातें करते, कितने नामों से पुकारते हैं, तो हृदय से ये नाम उठते हैं, कोई रटे रुटाए नाम नहीं है। हम जैसे प्रार्थना करते हैं, जब आकुलता से प्रार्थना होती है तो वहां पर रटी रिटाई प्रार्थना काम में नहीं आती। भले हम रोज प्रार्थना करेंगे जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे कहते रहेंगे, मन हमारा संसार में भटकता रहेगा, प्रार्थना में तीव्रता नहीं रहती है। पर जब विपत्ति आती है तब क्या मैं जय जगदीश हरे कहता हूं? तब तो यही कहता हूं, जगन्नाथ दयामय, कृपा करो प्रभु, संकट में पड़ा हुआ हूं, तुमने गज का उद्धार किया संकट से, मैं तुम्हारे चरणों का आश्रित हूं। अपनी भाषा में मैं प्रार्थना करता हूं, व्याकुल होकर के प्रार्थना करता हूं, संकट से उबारने के लिए प्रार्थना करता हूं। तो मानो यह जो साधक है यह सत्य को देखने की प्रार्थना करता है, कृपा करो, कृपा करो, हे पूषण, एकर्षे, यम, सूर्य, प्राजापत्य, मानो ये भिन्न भिन्न पक्ष हैं, भिन्न भिन्न विधाएं हैं। पूषण माने पोषण करता हो, सूर्य पोषण करता है, तो सूर्य की रश्मियों से पोषण होता है। तो हे पूषण, एकर्षे, जो अकेला गमन करता है, तुम अकेले गमन करते हो, तुम मुझ पर कृपा करो, तुम तो अकेले ही चलते हो, तुम सामर्थ्यमान हो प्रभु, पर मैं अकेला नहीं चल सकता, मैं तो तुम्हारी सहायता की अपेक्षा रखता हूं और सहायता की याचना करता हूं। यम, तुम सबका तो नियमन करते हो, तुम कृपा करो, यह जो मेरे भीतर में प्रवृत्तियां उठी हैं इनका भी तुम नियमन करो। हे सूर्य, हे प्राजापत्य, हे प्रजापति को माने प्रजाजनों को जो लाभ पहुंचाने वाले तुम, प्रजाजनों के रक्षक तुम, रक्षा करो मेरी भी, मैं भी तो तुम्हारी प्रजा हूं, ऐसी प्रार्थना। और क्या प्रार्थना? व्यूह रश्मि समूह तेजः, ये जो तुम्हारी किरणें हैं, जिन किरणों के कारण मैं सत्य को देख नहीं पा रहा हूं, इनको जरा इकट्ठा कर लो, समेट लो, और समूह तेजः, अपने तेज को समेट लो, तुम्हारे तेज के कारण तुम्हारा मुखड़ा दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए इस तेज को जरा समूह समेटो, कृपा करो, ऐसी व्याकुल होकर के प्रार्थना की। और उसके पश्चात इसी मंत्र में दिखाया, क्या कहा? ऐसी प्रार्थना, आकुल होकर के प्रार्थना, व्याकुल होकर के प्रार्थना। तो कहते हैं ऋषि, साधक क्या कहता है? यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि, मानो एक स्थिति ऊपर उठाया, कहता हे सूर्य, यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि, तेरा जो कल्याणतम रूप है, तेरी कृपा से मैं देखने में समर्थ हो रहा हूं। माने इसी एक मंत्र में साधना और सिद्धि की अवस्था सबका वर्णन कर दिया। पहले हमने देखा गुरुजी ने उपदेश दिया, उसके अनुसार उसने जीवन के कर्म किए, विद्या का अनुसरण किया, और फिर उसके पश्चात उसका मन अंतर्मुखी बना, आकुल व्याकुल होकर के भगवान से प्रार्थना करता है, और प्रार्थना के फल स्वरूप ऐसा उसे लगा कि सूर्य देव ने, ईश्वर ने कृपा की, अपने सुनहले आवरण को समेट लिया। और तब क्या कहता है? यत्ते रूपम कल्याणतमम, जो तुम्हारा अत्यंत कल्याणमय रूप है, सबसे कल्याणमय रूप है, तत्ते पश्यामि, वह मैं देख रहा हूं। और फिर इसके पश्चात यह तो हो गई अनुभूति, जहां पर द्वैत थोड़ा सा बना हुआ है, और उसके पश्चात वह चला जाता है अद्वैत में। यो असावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि, यो असावसौ पुरुषः, जो पुरुष तुम्हारे भीतर वही मेरे भीतर में है, मानो आइडेंटिकल बोध, आइडेंटिटी, या अद्वैत की अनुभूति करता है साधक। जो तुम्हारे भीतर पुरुष वही मेरे भीतर का पुरुष, मानो वह हाईएस्ट जिसे हम कहेंगे, उच्चतम अनुभूति को वह प्राप्त करता है, यह बताया। अब इसके पश्चात क्या बताते हैं 17वें मंत्र में? अब यह जो साधक सिद्ध बन गया, कैसे वह धीरे धीरे एक एक स्तर करके ऊपर उठा, उसने पहले प्रार्थना की, प्रार्थना करने के पश्चात उसको दर्शन होता है, रूप का दर्शन होता है, और उसके पश्चात वह रूप का दर्शन करते करते स्वरूप में खो जाता है। रूप के पश्चात स्वरूप, आकार के पश्चात निराकार, सगुण के पश्चात निर्गुण, द्वैत के पश्चात अद्वैत, मानो यहां पर जाकर के वह चरम जिसे कहेंगे अनुभूति, उस अनुभूति में पहुंच जाता है। अब यहां पर चित्रण किया जा रहा है, अंतिम दिन आ गए हैं उस सिद्ध व्यक्ति के। तो वह सिद्ध व्यक्ति जो पहले साधक था, गुरु के पास जाकर के जिसने उपदेश सुना, साधना की, सिद्ध हुआ, आज वह मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है। और मृत्युशैया पर पड़ा हुआ क्या कहता है? हम जब मृत्युशैया पर पड़े रहते हैं तो हमें कितनी वेदना होती है, डर लगता है कि मैं मर रहा हूं, ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त तो हुआ जा रहा है। पर यह जो ज्ञानी पुरुष, समाधिवान पुरुष, तत्वद्रष्टा पुरुष, यह जब मृत्युशैया पर पड़ा होता है वह क्या कहता है? वायुरनिलम अमृतम अफेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतोस्मरकृतम स्मर क्रतोस्मरकृतम स्मर। बड़ा विलक्षण यह मंत्र है, कहा कि वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। अब यह शरीर थोड़ी देर के बाद चिता पर लिटाया जाएगा और यह जो शरीर है अब वह शरीर भस्म रूप में परिणत हो जाएगा। अब कहता है वह जो सिद्ध हुआ है, अहो पंच तत्व, तुम लोगों ने मिलकर के यह शरीर बनाया, अहो वायु तत्व, अब जाओ जाओ तुम इस समष्टि वायु तत्व में जाकर के मिल जाओ, अहो अग्नि तत्व, तुम जाओ अब समष्टि अग्नि तत्व में जाकर के मिल जाओ। अब थोड़ी देर बाद यह शरीर तो केवल भस्म का, राख का एक ढेर मात्र ही बचा रहेगा। और मन को संबोधित करके क्या कहता है? ओम भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, क्रतो स्मर कृतम स्मर, जो तूने किया है उसका स्मरण कर। ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, यहां पर इसको दोहरा दिया गया है और जहां पर दोहराया जाता है वहां पर उपनिषद की समाप्ति मानी जाती है। तो इसके बाद एक मंत्र और है, पर यहां पर हम यह मानते हैं कि उपनिषद की समाप्ति हो गई, क्योंकि इस वाक्य को बार बार दोहरा दिया, क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर, तो यहां मानो उपनिषद समाप्त मन को संबोधित करता है। क्रतु माने मन, हे मन अपने किए का स्मरण कर, स्मरण कर, अपने किए का स्मरण कर, स्मरण कर। कुछ लोगों ने व्याख्या की कि अपने किए का स्मरण कर माने पुराने जीवन में अभी तक जो तूने किया भला बुरा उसका स्मरण कर, यह इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि मन तू स्मरण तो कर। जैसे हम कोई कठिन यात्रा करते हैं उसको जब भी किसी को बतलाते हैं कितना आनंद होता है। जैसे पहली बार हमने अमरनाथ की यात्रा की, बहुत कठिन यात्रा लगी, पैदल गए, कितनी कठिनाइयां आई, कितनी बार हम फिसल गए, ऐसा लगा कि हम नीचे जाकर के ग्लेशियर में डूब ही रहे हैं, कितनी कठिनाइयां उस समय, तो कितनी कठिनाइयां। पर जिस समय पहुंच गए, अमरनाथ जी के दर्शन किए, गुफा में बैठे रहे और बाद में लौट करके आए, तो कितना आनंद। कोई पूछे कि कैसा आपने अमरनाथ दर्शन किया, भाई क्या बताएं, क्या मजा आया, अभी हम उसका स्मरण करके मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मानो कहते हैं कि भाई देखो कितनी कठिनाई आती है, उस समय कठिनाई हुई होगी पर आज कठिनाई का स्मरण करके एक धन्यता का बोध। और जब भी मैं किसी को बताता हूं अमरनाथ यात्रा के संबंध में, आनंद का बोध। तो यहां पर उसी प्रकार अपने मन को संबोधित करके कह रहा है कि देखो मन कितना हमने एडवेंचर किया, धन्य हो मन तुम मेरे बड़े साथी बने, धन्य हो शरीर तुमने मेरा कितना साथ दिया, साधना में कितना साथ दिया, मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, तुम दोनों का बड़ा आभारी हूं। हे तन हे मन तुम दोनों सहायक न होते तो मेरी साधना किसी भी प्रकार संपन्न नहीं हो पाती थी, मैं तो तुम लोगों को धन्यवाद देता हूं। और मन जरा विचार तो कर, स्मरण तो कर, कैसे कैसे हमने क्या क्या जोखिम नहीं उठाए साधना की दृष्टि से। मन तू कभी निराश हुआ, तू कभी प्रफुल्लित हुआ, कभी ऐसा लगा कि लक्ष्य समीप आ गया, कभी लगा कि लक्ष्य कितना दूर चला गया, आज जरा स्मरण तो कर कितनी कठिनाइयां और कितनी कठिन चोटियों को हमने पार किया है। मानो जो कुछ साधना के क्षेत्र में उसने किया है मन से कहता है जरा स्मरण कर, ईश्वर को प्रभु को पाने के लिए यह कैसी विलक्षण यात्रा रही है, इसका स्मरण तो करो। अंतिम क्षणों में यही तो स्मरणीय है, नहीं तो और क्या स्मरणीय है। संसार में हम अंतिम क्षणों में स्मरण किसका करते हैं? हम करेंगे अपने किसी प्रियजन का, अपने धन का, अपनी संपत्ति का। क्या होगा संपत्ति का? अरे क्या होगा, तू तो मर रहा है, अरे भगवान का स्मरण कर, संपत्ति चूल्हे में जाए, तेरा जो प्रियजन है कहीं भी जाए, क्यों चिंता करता है। अंतिम समय में तो भगवान का स्मरण कर। श्री रामकृष्ण एक चुटकुला सुनाते हैं, अरे देखो तुम लोग तो कहते हो कि अंतिम समय में भगवान का नाम ले लेंगे, हाँ गीता पढ़ करके कहते हो, गीता में कहा है अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है बस वह मुक्त हो जाता है। बात तो ठीक है, पर अंत काल में भगवान का स्मरण आए तब न, अगर अभी से तुमने अभ्यास नहीं किया तो अंत काल में भगवान का स्मरण कैसे आएगा। सुनो एक कहानी सुनो, श्री राम कृष्ण की कहानी, वे तो चुटकुलों के माध्यम से सब समझाते और सुनाते थे। सुनो, ऐसा हुआ एक सेठ था, मर रहा था, प्राण बिल्कुल जाए जाए ऐसा हो रहे थे। अब उसके तीन बेटे, तीन बहुएं वहीं पर बैठी हैं मुमूर्ष, और तीनों बेटे फुसफुसाते हुए कहते हैं देखो पिताजी ने कुछ बताया नहीं कि कहां पर धन रखा है, कहां पर सारी बातें रखी हुई हैं, संपत्ति है, अंतिम समय तक कुछ उन्होंने बताया नहीं। और उन्होंने देखा कि पिताजी कुछ बोलने की इच्छा करते हैं पर कोई आवाज नहीं निकल रही है, तो आपस में उन्होंने किया कि ठीक है, डॉक्टर से संपर्क साधा, कहा किसी प्रकार आप बोलने में तो समर्थ कर दीजिए ताकि ये कुछ कहें। कहा कि लंबी फीस है, कहा कोई हर्ज नहीं, खर्चा हो पर पिताजी जरा आखिर बता तो दें, वे जरा बताना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। अब उस घर में लालटेन जल रही थी और यहां कथा कहती है, श्री राम कृष्ण देव कहते हैं ठीक है, वैद्य ने, चिकित्सक ने जड़ी बूटी जो भी होगी बहुत कीमती चटाई थोड़ी सी, थोड़ा सा होश उस मरते हुए व्यक्ति को आया और आने से वह बोला। क्या बोला? कान लगा करके उन्होंने सुना, अरे लालटेन की बत्ती ज्यादा जल रही है, तेल ज्यादा जल रहा है, जरा नीचे करो, यही आएगा मरते समय में, यही आएगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर का नाम नहीं आएगा। लड़कों ने सोचा था संपत्ति के बारे में पिताजी बताएंगे, कहां संपत्ति, लालटेन की रोशनी कम करो, बत्ती ज्यादा जल रही है। तो यहां पर यही कहा, मन यह सब स्मरण मत कर। क्या स्मरण कर? क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर, मन जरा स्मरण तो कर जो एडवेंचर्स तूने किए हैं, जरा देख कैसा आनंद आया है भगवान की तरफ जाने में, साधना जो तूने की है। धन्य हो तन, धन्य हो मन, दोनों को धन्यवाद। और फिर पंच तत्वों से यह कह रहा है, जाओ भाई जाओ, जाओ आपस जाओ, अब समष्टि वायु तत्व में, समष्टि अग्नि तत्व में जाकर के मिल जाओ, तुम सबको विदा, अलविदा अलविदा। मानो कह रहा है मृत्यु शैया पर पड़े होकर, कल्पना तो कीजिए, कल्पना में ही आनंद लीजिए कि मैं यदि मृत्यु शैया पर पड़ा हूं और उस समय सबको अलविदा कहूं, हंसते हुए चेहरे से मुस्कुराते हुए, अलविदा वायु तत्व, अलविदा अग्नि तत्व, अलविदा शरीर, अलविदा मन, तुम सबको धन्यवाद बधाई, और सबसे मैं विदा मांग करके चलूं। कितना आनंद है, कैसा अद्भुत यह मानो अनुभूति कैसी है, यह यहां पर कहा गया। अब उसकी मृत्यु हो गई, यह यहां पर बताया गया। चिता में उसको लिटा देते हैं, धू धू करके चिता जलने लगती है, और वहां पर जो लोग हैं, स्नेही जन हैं, शिष्य जन हैं, और भी जो पे वे खड़े हैं और अग्नि से प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? अग्नि नय सुपता राये अस्मान, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, युयोधि अस्म जुहुरान मेनो, भूष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। ये जो हैं आए हुए हैं वे सब प्रार्थना के स्वर में कहते हैं, अग्नि नय सुपता राये अस्मान, हे अग्नि हम सबको भी इसी प्रकार सुपथ में ले चलना, अपने अच्छे अच्छे कर्मों का भोग करने के लिए जैसे ये सुपथ में जा रहे हैं इसी प्रकार हमें भी सुपथ में ले चलना। हे अग्नि तुम तो सब कुछ जानते हो, तुम्हारे पास क्या छिपा हुआ है, हमारे भीतर में जो जुहुराणम है जो कुटिलता है, जो छल का भाव है, यह जो टेढ़ापन है, कृपा करो टेढ़ापन को दूर करो। युयोधि अस्मात् अस्मत् जुहुरानमेनो, यह जो हमारे पाखंड पूर्ण पाप है हमारे भीतर, उन पापों का तुम नाश करो, कुटिलता का नाश करो। हम तेरे लिए बारंबार नमस्कार करते हैं, वाणी से नमस्कार करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं, मानो ये सब मिल करके इस प्रकार अग्नि की स्तुति करते हैं, और ऐसा पटाक्षेप होता है दृश्य का। तो देखा आपने, यह ईशावास्योपनिषद है तो छोटा, 18 मंत्रों का, परंतु इन मंत्रों के भीतर में सारा जीवन दर्शन छिपा हुआ है। कैसे? हमें पहले सिद्धांत बता दिया गया, यह सिद्धांत है, इस सिद्धांत को अपने जीवन में व्यावहारिक बना लो। 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, डर किस बात का है? कर्म नहीं चिपकता, चिपकने वाली तो आसक्ति है। आसक्ति का त्याग करो। कैसे आसक्ति त्यागूं? वह जो दो दृष्टियां दे रही, ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि परमात्मा से सब कुछ को ढांक लो और देखो। भक्ति की दृष्टि, सबके भीतर में परमात्मा को बैठा हुआ देखो। यह यही त्याग है। इस त्याग के द्वारा संसार का भोग करो और आगे चलो। और यही बताया, यह आत्म तत्व है, इसको जानो, यही तुम्हारा अपना स्वरूप, जानने से मुक्त हो जाओगे, अमृत फल के अधिकारी बनोगे। अगर नहीं जानोगे, आत्मघाती बनोगे, गहरे अंधकार से भरे लोकों को जाओगे। कैसे जाएं? या कर्म और जिसको कहेंगे ज्ञान, अविद्या और विद्या, विज्ञान और धर्म, इन दोनों का अद्भुत समन्वय, और उसी प्रकार व्यक्तिगत साधना, सामाजिक साधना, इन दोनों का अद्भुत समन्वय, भगवान को केंद्र बना करके ऐसा हम करेंगे तो हम अपना उत्थान करने में समर्थ होंगे। जो दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए आगे बढ़ेगा ईश्वर को केंद्र बना करके, उसके जीवन में अहंकार का रोग नहीं आवेगा और वह अपने जीवन को उन्नत बनाने में समर्थ होगा। यह कहा गया है, यह समर्थ हुआ, कैसी अनुभूति भी, यह सारा बताया गया।